ఓం శాంతి. సూరజ్ భాయ్ జీ సే ఆప్ లోగ్ బార్ బార్ మిల్తే రహతే హై. ఇస్ యజ్ఞ మే ఆప్కి ఏక్ అలగ్ పహచాన్ హై. బహుత్ సుందర్ క్లాసెస్ ఆప్ కరాతే హై. లేకిన్ ఆజ్ భ్రాతాజీ హమ్ సబ్కే బీచ్ ఆప్కో క్లాస్ కరానే నహీ ఆయే హై, లేకిన్ ఏక్ ప్రశ్నోత్తరీ కార్యక్రమ. हमारा यज्ञ लगभग 85-86 वर्ष कंप्लीट कर चुका है. इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, इतिहास है, और इतिहास को जानने की रुचि प्रायः हम सब में रहती है. बहुत सारे महापुरुष इस यज्ञ में होकर के गए हैं, जिन्होंने हमारे लिए एक बहुत सुंदर पथ का निर्माण किया है, हमारे लिए मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं. और उनके बारे में जानना, उनके बारे में सुनना, इसमें हमारी बहुत रुचि रहती है. जब भी हम यज्ञ इतिहास की बातें सुनते हैं, मन को बड़ा आनंद मिलता है और पुरुषार्थ के लिए बल मिलता है. ऐसा लगता है कि काश हमने भी बाबा को देखा होता, हमने भी मम्मा को देखा होता, उनसे हम भी पालना लिए होते. खैर, हर एक का अपना अपना पार्ट है. बहुत सारी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा भी है, उनकी पालना भी ली है. अब यज्ञ लगभग 85-86 वर्ष पूरे कर चुका है. एक लंबी यात्रा है, लंबा समय है. इसमें अब तो हमारे पास वो अमूल्य धन बहुत कम रह गए हैं. उनमें से एक विशेष रतन आज हमारे बीच है, सूर्य भाई जी, जिन्होंने अपने निस्थूल नेत्रों से बाबा को देखा भी है और उनकी पालना भी ली है. बहुत सारे वरदान भी बाबा से प्राप्त किए हैं. तो हम आज बहुत सारी बातें भ्राता जी से सुनेंगे, वो अनुभव जो पिछले करीब 55-60 वर्षों में आपने अपने हृदय में सजोया है, अनुभव किया है. और आज आप एक इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां तक पहुंच पाना हम में से बहुतों का सपना होता है. तो अधिक समय ना लेते हुए आज की सभा में हम सबसे पहले भ्राता जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं. भ्राता जी, स्वागत है.
थैंक यू.
और सबसे पहला प्रश्न हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप यज्ञ में आए, प्रारंभ में पहली बार जब आप मधुबन आए, बाबा से मिले, बाबा को सुना, देखा, इस यज्ञ को देखा, छोटा मधुबन था तब, उस समय का आपका क्या अनुभव है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन. इसी से शुरुआत. यज्ञ बहुत छोटा था. पांडव भवन जो अब आपको दिखाई देता है, इससे तीसरा हिस्सा ही था, बस 1/3. फर्श भी नहीं था, मिट्टी थी. लेकिन बाबा का बगीचा बहुत सुंदर हुआ करता था. यज्ञ में थोड़े ही लोग रहते थे और दो बार पार्टियां आती थी साल में. एक आती थी दशहरा, दिवाली, 20 दिन होते थे, दो ग्रुप आ जाते थे. 50-60 लोग आ गए तो बहुत हो गया. दूसरा आते थे, बच्चों की छुट्टी होती है अप्रैल के बाद, मई जून, दो बार ये ग्रुप आते थे. तो हम भी जून में आए. और जैसे ही पीछे के गेट से मधुबन में प्रवेश किया, पीछे का गेट आप सबको ख्याल होगा, तब ऐसा सुंदर नहीं था. पथरी पड़ी हुई थी, लकड़ियों के बांसों का एक छोटा सा गेट जिससे कोई भी कूद के आ जाए, 3-3.5 फुट ऊंचा, ऐसा ही था. बस पैदल आया करते थे बस स्टैंड से. और सामान लाने के लिए एक बैलगाड़ी होती थी. बैल बहुत सुंदर थे. किसानों के पास अगर ऐसे बैल हों तो चोट लग जाते थे पीछे. बहुत हेल्दी, बड़े सुंदर दिखने वाले बैल. उसमें हम सब का सामान आ गया, सड़क के रास्ते, सड़क छोटी थी ये, और हम सब बाजार से पार होते हुए मधुवन में पिछले गेट से प्रवेश हुए। प्रवेश करते ही पहला सीन जो मुझे अट्रैक्ट किया, राइट साइड में बगीचा, लेफ्ट साइड में एक छोटा सा रूम है जिसमें प्रेस होती थी, कपड़े धुलाई करके आते थे, छंटते थे, वहां कुछ बहनें पुरानी वर्क कर रही थी। मुझे आभास हुआ ये सब हमारे हैं। ग्रेट फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग। आगे बढ़े, बाबा के कमरे तक पहुंचे, मेरा मन खींचने लगा उधर बगीचा। धीरे धीरे ही जा रहे थे, हमारी पार्टी राजौरी गार्डन दिल्ली से आई थी, 19 लोग थे हम, दो टीचर बहनें थी हमारे साथ। बाबा के रूम के आगे पहुंचे तो क्या देखा, बाबा जो खाट होती है ना एक बाणों की, उस पर बैठे हैं। कमरे के बाहर जहां जो पैसेज है, जो अभी कवर है, वो कवर नहीं था, दो दो फुट की दीवारें थी बस, सब दिखता था, और बाबा वहां बैठे हैं। और हम तो देखते ही, ओह बाबा, और बाबा ने कहा आओ बच्चे ठीक से पहुंचे, और कहा जाओ तैयार होकर आओ, फिर बाबा मिलेंगे। पहली झलक। और फिर तो 7 दिन यहां रहे हम और सब कुछ देखा बाबा का। उसमें 3 बार बाबा से मुलाकात हुई, हरेक से बाबा अलग अलग भी मिलते थे। अपने कमरे में पार्टी बाहर बैठ जाती थी और एक एक आते थे, और बाबा अच्छा समय देते थे, जिसको जितना चाहे मिलना हो मिले, और बाबा से मिले। और पहला अनुभव, बाकी बात बाद में, बाबा ने जो मुझे दृष्टि दी पहले ही दिन, अब तब हमें इतना ज्ञान नहीं था, हम भी छोटे थे, सेंटर जहां से हम आए थे वहां तो सेंटर नहीं थे मुजफ्फरनगर, लेकिन राजौरी के माध्यम से आए थे, हमारे अंकिल वहां ज्ञान में चलते थे, तो हमें बहुत चीजों का इतना पता नहीं था। मुरली है, ज्ञानमृत है, इतना ही पता था। बाबा ने दृष्टि दी अच्छी तरह और मुझे हो गई डीप साइलेंस, जिसको आजकल हम कहते हैं ऐश्वर्य कर दिया बाबा ने, तब ये इतना ज्ञान नहीं था। और वो तब तक रहा जब तक मैं मधुबन में रहा। 7 दिन हम घूमे फिरे, बाबा घूमने भेजा करता था, कहता था आज बच्चे जाओ गौमुख देख कर आओ, आज इधर चले जाओ दिलवाड़ा देख कर आओ, आज अचलगढ़ देख कर आओ। बाबा खुद भेजता था, साधन तो नहीं होते थे, बहुत जगह पैदल चले जाते थे, बहुत जगह बसें चलती थी, बहुत कम बसें चलती थी, उसमें बैठ के थोड़ी दूर चले जाते थे। तो ये पहला अनुभव बाबा का, जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और दूसरा जो मुझे सदा याद रहा, बाबा जब सवेरे सवेरे क्लास में आते थे तो हिस्ट्री हॉल के इधर के गेट पर, जहां से प्रवेश करते हैं बहनों की साइड से, बाबा आकर गेट पर कुछ क्षण खड़े होकर दृष्टि देते थे सबको प्रवेश करने से पहले, और उस दृष्टि से सारा हॉल जैसे चार्ज हो जाता था। वो मुझे याद रहता है सदा। हम भी बैठे रहते थे, 5:30 से बैठ जाते थे और बाबा 6:10 पर आते थे, एक्यूरेट टाइम। तो बच्चे छोटे, थोड़ी सुस्ती भी होती थी, बाबा आए एकदम एनर्जेटिक हो गई पूरी क्लास, फिर बाबा की मुरलियां चलती थी। ये थे शुरू के अनुभव।
ब्रता जी, जब आप पहली बार आए उस समय आपकी आयु कितनी थी?
19 साल।
आपने बताया कि उस समय 2 बार ही पार्टीज आती थी। हाँ। वो भी बहुत छोटी संख्या में। तो फिर सारा वर्ष यहाँ का क्या सेवाओं का प्रारूप होता था?
बस ये था कि कोई कोई तो आते ही रहते थे, 2-4 लोग आ गए, 10 आ गए, पर बाबा को एकांत बहुत रहता था और मामा को बाबा सेवाओं पे भेज देते थे, और ऐसा था क्योंकि बहनें ज्ञान देने वाले बहुत कम थे। मैं तो कभी कभी सोचा करता हूं कि प्रभु की लीला देखो, जिसको ये भी बोलना आता है ना तुम आत्माएं हो और शिव बाबा को याद करो, उसको बाबा कहता था सेंटर में जाओ सेवा करो, बच्ची तुम बोल सकती हो, अच्छा ज्ञान दे सकती हो, भाई अगर कोई है थोड़ा पढ़ा लिखा गया जाओ बच्चे फलाने सेंटर में जाओ सेवा वृद्धि करो, तो मामा भी चली जाती थी, सब चले जाते थे। तो बीच का जो समय होता था, कोई कोई बहनें आती रहती थी जो पुरानी थी या टीचर बहनें, और दो चार लोग भी आते रहते थे बीच बीच में बाबा के पास। और 67 से पहले बाबा भी जाते थे, साल में एक दो बार कहीं कहीं जाते थे। कहाँ जाते थे? सहारनपुर, पंजाब के कई सेंटर, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और मुंबई, यही बहुत सेवा थी। पटना में भी बहुत बड़ी सेवा थी उन दिनों, बहुत सुंदर सेवाएं थी। ये उन दिनों के बहुत मुख्य स्थान थे बाबा के सेवाओं के, सहारनपुर, दिल्ली में कई जगह। दिल्ली में 5 ही सेंटर हुआ करते थे, कानपुर, पटना और अमृतसर जहाँ चंद्रमणि दादी रहती थी, अम्बाला जहाँ ध्यानी दादी रहती थी जिसकी स्थिति बहुत अच्छी थी। और आपको ये बात सुनकर एक सुखद फीलिंग होगी, पंजाब में, दिल्ली में, यूपी के उस साइड में आर्य समाज का काफी प्रभाव है, तो वो बहनों का विरोध बहुत करते थे। लेकिन उस विरोध के बाद भी अम्बाला से 54 बहनें और एक दो भाई समर्पित हुए, ये बहुत बड़ी एक चीज थी उन दिनों की।
ब्रते जी, हम लोग यज्ञ इतिहास में सुनते हैं कि 1950 में जब बाबा यहाँ पर आए सभी बच्चों को लेकर के, तो करीब 400 जितनी दादियां थी, पर जब आप आए उस समय मधुबन की स्ट्रेंथ क्या थी, और जब आप लोग पार्टीज में यहाँ आते थे तो आप लोगों के रहने और खाने की जो व्यवस्था होती थी वो किस तरह से होती थी?
देखिए, उस टाइम तो बाबा सभी को सेवाओं पर भेज चुके थे, बैग रिपोर्ट आया था यहाँ आने के बाद, और उसमें लगभग 100-110 भाई बहनें बचे थे, बस 380 में से सभी निकल गए थे, क्योंकि वो टाइम बहुत क्रिटिकल, बहुत भारी समय था। आप सोचो, भोजन नहीं है, बीमार हो गए, दवाइयां नहीं हैं। अब एक दो दिन की बात हो तो मनुष्य सोच लेता है चलो आज है नहीं है कल हो जाएगा, लेकिन साल बीत गए, 1-2-3 साल, तो बहुत लोग निकलते गए कि यहाँ तो अब यज्ञ आगे चलेगा नहीं। और वो शिव बाबा की प्लानिंग थी कि जो थोड़ी भी कच्ची आत्माएं हैं वो बाहर जाएं, और जो बहुत स्ट्रांग हैं वो केवल रहे। तो 5 भाई बचे थे और 100 जितनी बहनें दादियां जिनको हम कहते हैं, मधुबन में मुश्किल से 25-30 भाई तो बहुत ही कम थे। मैं जब आया तो मेरा नंबर 11 हुआ था, 10 लोग जो थे उसमें से कुछ तो सेंटरों में चले गए थे, भाई भी चक्कर लगाते थे, पर 4 भाई वो पुराने विश्वकिशोर दादा शरीर छोड़ चुके थे, और 3-4 भाई और बुजुर्ग लोग थे बस। यंग लोगों में मैं आया और 1-2 और थे, बस इतने ही थे, 10-11 भाई और 15-20 बहनें होंगी। इतनी स्ट्रेंथ रहती थी, पार्टी आ जाती थी तो जगह तो यज्ञ में बहुत कम होती थी। तो हम लोग तब बहुत छोटा था ना यज्ञ, तो हम लोग जो यहाँ रहने वाले हमको कमरों से बाहर निकलना होता था, बरंडों में अपनी चारपाई बिछा लो, कैसे भी सो, कहीं भी नहा लेना। सब यंग थे और नहाने धोने कोई बात ही नहीं थी, दूर जाके भी नहाते थे, मस्ती थी कि बाबा के घर में 50 भाई बहने आ गए हैं, 60 आ गए हैं, इतने आए तो फुल हो जाता था, 100 आ गए तो जगह ही नहीं बचती थी कहीं, 100 तो कभी कभी आते थे। भोजन आदि की व्यवस्था थी बाबा के यज्ञ में। एक चीज मैंने शुरू से देखी, मैं तो किचन में आया 69 अप्रैल में, लेकिन मैं देखता था कि यज्ञ में भोजन शाही, उसमें कोई कमी नहीं, कोई कंजूसी नहीं, अच्छे से अच्छा भोजन, और बाबा जब मामा थी मामा भी, और फिर बाबा हर पार्टी के साथ एक बार हिस्ट्री हॉल में बैठकर ब्रह्मा भोजन खाते थे। बाबा की आगे टेबल लग जाती थी, उस पर कुर्सी रख दी जाती थी पीछे, बाबा वहां बैठते थे और दो दो लाइन लग जाती थी भाई बहनों की, नीचे बिछा दी जाती थी दरी जैसी, और बाबा सबके साथ बैठकर ब्रह्मा भोजन हर पार्टी के साथ एक बार अवश्य ये भी किया करते थे।
उस समय की दिनचर्या क्या होती थी यज्ञ की?
दिनचर्या में ये था कि अमृत वेले का योग तो इस तरह नियमित नहीं था, जिसको उठना वो उठ सकते थे, और दिनचर्या यही 4 बजे उठने का रखते थे, जिसको भी उठना स्वइच्छा से, बाकी कोई आगे पीछे भी उठते रहते थे जिसको जैसी लगन। मुरली का टाइम 6:15 था, बाबा 6:10 पर एक्यूरेट टाइम अपने कमरे से निकले, किचन से चक्कर लगाते हुए, किचन जहाँ अब है वो नहीं था, आपने देखा हो जहाँ टेलीफोन बूथ बना हुआ है बीच में ही, पहले ही उसके पीछे 2 रूम हैं वो किचन होते थे, वहीं 2 छोटे-छोटे स्टोर थे, वहां से चक्कर लगाते हुए जहां शांति स्तंभ है उधर को होते हुए 5 मिनट में किचन क्लासरूम में, और 6:15 से 7:15 क्लास बाबा की मुरली चलती थी, 5 मिनट बाबा योग कराते थे, 6:10 से 6:15 और 6:15 से 7:15 तक एक्यूरेट 1 घंटा मुरली, उसके बाद बाबा उठ जाते थे और मुरली कोई बहन बैठकर रिपीट कराती थी, और फिर यही दिनचर्या जो चली आ रही है वैसी दिनचर्या चलती थी। आने वाली पार्टियों की क्लास होती थी, एक सवेरे एक शाम बाबा घूमने फिरने भेजा करते थे, और शाम को 10 बजे तक क्लास होती थी, 9 से 10 रात्रि क्लास, उसके बाद सभी का विश्राम होता था। दूध पहले पिलाया जाता था सबको, ये बाबा की एक नियम बना हुआ था कि क्लास के बाद तुरंत सभी को दूध मिलेगा, एक नाप की वो होती थी बनी हुई देने वाली, एक एक सबको मिलेगी और दूध पीकर ही सब सोएंगे, ऐसी दिनचर्या चलती थी।
ब्रत जी, अभी भी आपने बेगरी पार्ट का जिक्र किया, बेगरी पार्ट एक्चुअली शुरू कब हुआ और कितने समय तक ये चला? और उस समय बहुत कुछ हम लोग सुनते हैं उस समय के बारे में कि यज्ञ की स्थिति ऐसी थी कि छोटी छोटी चीजें भी उस समय बाबा ने बेच दी थी, था ही नहीं कुछ यज्ञ में खाने के लिए।
इसका एक बड़ा कारण हुआ था कि जब कराची से सब सामान लेकर बाबा आबू में आए थे, उससे पहले कुछ सिंधी लोगों ने, जो बाबा के पास बहनें थी भाई थे, उनके माता पिता ने बाबा को कहा था आप पाकिस्तान छोड़ के भारत में आओ, सारा खर्चा हम करेंगे, हम आपको बहुत मदद करेंगे। लेकिन जब बाबा सब सामान सहित बहने भाइयों सहित यहाँ आ गए तो उन्होंने देने से मना कर दिया, ये उनकी चाल थी कि सब कुछ दादा का खत्म हो जाएगा और फिर हमारे बच्चे सब घर वापस लौट आएंगे। तो 50 में आए थे दिवाली पर, और क्योंकि तब से सब कुछ समाप्त हो गया था तो 2-4 मास में ही सब खेल समाप्त हो गया, किराया देने को पैसा नहीं बचा और खाने पीने की तो काफी दिक्कत हो गई। तो ये समय 3 साल तो चला होगा, और फिर बाबा ने बहनों को सेवाओं पर भेजा। अब इस बेगरी पार्ट के पीछे कई रहस्य थे, जो बहनें थी बाबा के पास दादियां, वो बाबा को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी, मरना आपके साथ जीना आपके साथ, अभी उनको सेवा पे भेजना है, विश्व कल्याण करना है। तो ड्रामा में बेगरी पार्ट आया, निश्चित रूप से बाबा ने कहा होगा कि अब यहाँ क्या करोगे, जाके सेवा करो, जिसकी जहां थोड़ी बहुत पहचान थी उनको वहां भेज दिया। वंडरफुल बात थी कि कई जगह ऐसी स्थानों पर भी बहने गई जहां किसी की कोई पहचान नहीं थी। बहने सुनाया करती थी, हमने तो 14 साल दुनिया नहीं देखी थी, हमने पैसे नहीं देखे थे, हिंदी हमसे पूरी नहीं आती थी, भोजन हमारा अलग था, दिल्ली में पहुंच गए, कहां पहुंचेंगे कहां जाएंगे, चलो यमुना के किनारे बैठते हैं जाकर, न रहने का पता न खाने का पता। लेकिन एक विश्वास था कि जिसने भेजा है उसने ये सब इंतजाम पहले ही कर दिया होगा और सब कुछ ठीक होता रहा। तो ये ऐसे 3 साल थोड़ा सा कठिनाइयों का काल बीता। फिर बहुत सारी बहनों को भेज दिया, यहां तो बहुत कम रह गए, समझो 15, 16, 18, 20 लोग यहां बचे होंगे। फिर बहनें सेवाओं पर गई, वहां से थोड़ा थोड़ा आने लगा और यज्ञ में वृद्धि होने लगी। तो 54-55 से सेवाएं शुरू हो गई और अच्छी वृद्धि शुरू हुई।
ब्रता जी, इस समय हम देख रहे हैं तो यज्ञ में समृद्धि बहुत है। आज सब कुछ यज्ञ में है, गाड़ी घोड़े, खाना पीना इतना अच्छा, सुंदर सुंदर भवन, रहने के लिए बड़ी उत्तम व्यवस्था है। मुझे याद है 90 के आसपास जब मैं यज्ञ में आया था उस समय तक भी मधुबन में इतनी सुविधाएं, इतने साधन नहीं थे। हम लोग को लच्छू दादी, वो भूरी दादी माप करके तेल देती थी, साबुन गिनती से, मतलब चप्पल भी साल में एक वो अगर गुम हो जाए तो बड़ा वो रखता था, अब कहाँ से दूसरा लाएंगे। तो 90 तक ये स्थिति थी, तो आपके समय में यज्ञ की क्या स्थिति थी?
और भी थोड़ी ढीली थी। हम लोगों को केवल हवाई चप्पल होती थी, एक छोटा सा पतला सा मफलर, एक हल्की सी जुराब, गर्म कपड़ों के नाम पर एक स्वेटर। अब वो कई साल हमें चलाना है। हंसी की बात सुना दूं, हमारी जो सामान देने वाली बहन थी, नाम संजय भाई ने बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा, उसकी नेचर थोड़ी सी बेगरी पार्ट से निकल के आए थे ना, थोड़ी इकोनॉमी की थी, मतलब बचत करना। तो हम लोगों को सर्दी में गर्म कपड़े धोने के लिए एक पाव सर्फ मिलता था बस, पूरी सर्दी के लिए। और उसमें जो प्लास्टिक की थैली मिलती थी ना, जिसमें वो सर्फ होता था, वो बहन जी कहती थी इसको सुरक्षित रखना, अगले साल इसी में मिलेगा। अभी किसी की खो जाए। हम लोग तो बड़ी संभाल के रखते थे कि सर्फ से ज्यादा वैल्यू उस प्लास्टिक की थैली की है भाई। तो काफी ऐसा समय था, कपड़े आदि बहुत नहीं होते थे और यहाँ ठंड बहुत होती थी। आपको खुशी की बात सुना दें, हम सब में किसी के पास भी छाता नहीं होता था, बरसात में ऐसे ही चलेगा काम सब, और पहनने आदि को भी साधारण जूता किसी के पास नहीं, यज्ञ में जूता कोई नहीं, हवाई चप्पल, किसी को ऐसी वैसी कोई चप्पल मिल जाती थी, ऐसा था बहुत ज्यादा। लेकिन यज्ञ बढ़ता गया, व्हीकल के नाम पर केवल 2 साइकिलें थी यज्ञ में, वो भी 2 लोगों के पास थी, वो तीसरे को देते भी नहीं थे। तो अभी पहाड़ियों में साइकिल कितनी चलेगी आप सब समझ सकते हैं। तो और ढीला हाल था, लेकिन विशेष बात यह हुई कि जब ज्ञान स्वरूप पहले बना ओम शांति भवन, उसकी अपनी कहानी है, और दादी की एक महानता सुना देता हूं इसी बीच में। ओम शांति भवन एक पहाड़ी थी, इसके नीचे ये एक सरदार का था, वो उसने विदेश में गया, वो और धार्मिक संस्था देखकर 70,000 का दे दिया यज्ञ को। पहाड़ी थी, अब उसको तोड़ा गया, तो हम सब लोग जो यज्ञ में थे रोज कार सेवा किया करते थे, हाथों में लग जाते थे पत्थर भी, और लेकिन खूब सेवा की, समझो 6 मास तो पहाड़ी को तोड़ने में, थोड़ा लेवल करने में लग गया था। तब हमारी सेवाएं विदेश में थोड़ी शुरू हो गई थी, कुछ गुजराती लोग आए, दादी की महानता देखो, और उन्होंने कहा दादी आप ये सबसे रिक्वेस्ट करती हो भाई, ओम शांति भवन बन रहा है, यज्ञ में थोड़ी सी मदद करो, आप क्यों रिक्वेस्ट कर रही हो, हम है ना 4-5 थे, हम बनवा देते हैं पूरा ओम शांति भवन, क्योंकि गुजराती लोग थोड़ा विदेश में धन वाले होते हैं। दादी का उत्तर था कि कोई भी जब यहाँ आएगा, दादी का ये संकल्प है कि जो भी यहाँ आए वो ये कहे मेरा ओम शांति भवन। इसलिए दादी चाहती है चाहे हरेक का 1 रुपया लगे, 10 रुपये लगे, सब ब्राह्मण मिलकर इसको बनाएंगे। तब ब्राह्मणों की संख्या काफी कम थी, 1 लाख भी नहीं थी, पर बन गया बहुत अच्छा। तब से यज्ञ में थोड़ी समृद्धि हुई, कॉन्फ्रेंसेज होने लगी, सेवाएं बढ़ने लगी, नाम होने लगा, अखबारों में आने लगा। और जब ज्ञान सरोवर बना, इसकी तो अपनी कहानी है, यहां कुछ नहीं बन सकता था, यहां भालू भेड़िए और चीतों के अलावा कोई नहीं रहता था, एक भी रूम यहां नहीं बनने की संभावना थी। दादी ने बहुत कोशिश की और अंत में प्रभु जी ने ही खेल रचा, बाबरी मस्जिद टूटी, तीन बीजेपी की सरकारें थी, तीनों को बर्खास्त कर दिया गया, गवर्नर रूल आया और राजस्थान में गवर्नर आ गए चेन्ना रेड्डी, और वो थे बहुत अच्छे ज्ञान की तरफ आकर्षित। उसने ये सारा काम किया और जब दादी से उन्होंने पूछा कि दादी पैसा कहां से आएगा ये बनने का, दादी ने उत्तर दिया, हमने हर बाबा के बच्चे को कहा है एक रुपया रोज दें। 3 लाख ब्राह्मण हो गए थे तब, 3 लाख से भी ज्यादा पैसा रोज आने लगा और ये ज्ञान सरोवर बन गया। ज्ञान सरोवर बनते ही यज्ञ में बहुत संपन्नता हो गई, ये ज्ञान सरोवर का भाग्य था बहुत श्रेष्ठ। कार्य किसी के पास नहीं होती थी, कार्य भी आ गई, केवल एक दादी के पास, एक निर्वैर भाई के पास थी। फिर कार्य आ गई, फिर एक साल के बाद ही ओम शांति शांति वन बनना शुरू हुआ और वहां क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां आने लगी, पहली पार्टी 10,000, दूसरी 12,000 और फिर 15,000 तक जाने लगी, तो यज्ञ की संपन्नता बढ़ी। तो ज्ञान सरोवर को यज्ञ को संपन्न बनाने का सबसे अधिक श्रेय जाता है।
शुरू शुरू में जब हम ज्ञान सरोवर में आए तो अक्सर हमारे बड़े लोग दादियां कहते थे कि ज्ञान सरोवर वालों का भाग्य है, ये भाग्य लेकर के आए हैं, इससे पहले यज्ञ में समृद्धि नहीं थी। जैसा कि भ्राता जी पुराने दिनों की रेखा चित्र हमारे सामने रख रहे थे, जब हम यज्ञ में आए तो उस समय भी 80 लोग एक रूम में सोते थे, 2 सेवाधारियों के लिए 2 विशाल भवन में हॉल जैसे होते थे। मतलब अगर रात को गलती से एक व्यक्ति करवट बदले तो वो दूसरे के ऊपर चला जाता था, इतनी ही जगह होती थी। और यज्ञ में वो दिन भी थे जब मुझे याद है एक नहाने के साबुन के लिए 1 हफ्ते तक मुझे चक्कर लगाना पड़ा था, तब नहाने का साबुन एक मिला, वो 2 महीने 3 महीने चलाना होता था और अंदर में ये डर भी रहता था कि कहीं गुम हो जाए तो क्या होगा। तो यज्ञ इस स्थिति से भी गुजरा है, लेकिन कहते हैं कि जो कष्ट है या जो कमी है वही हमारी साधना की कसौटी है। और हम लोगों ने ये देखा है तो हम सोच सकते हैं कि भ्राता जी ने क्या क्या देखा होगा, आपके समय में स्थिति कैसी रही होगी, तब जा करके कहीं निखर करके आप आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
सच बात तो यह बीच में ही बोल दूं, हम लोगों ने वो समय बहुत एंजॉय किया। मैं जाया करता था, हनीमून पॉइंट है 2.5-3 किलोमीटर डेली, बारिश हो रही चल दिए, अकेले ही चल दिए, फोग है, डर है उधर भालुओं का, पहुंच गए भीगते भीगते अकेले, भीगते भीगते आ गए, कपड़ा कहाँ सूखेगा ये भी नहीं पता होता था तो इस तरह का समय था, लेकिन हमने एंजॉय किया बहुत। दिक्कत तब मनुष्य को होती है जब कंपेरिजन होता है, तुलना, इसके पास बहुत अच्छा जूता है, मेरे पास चप्पल ही है, और जब सबके पास हवाई चप्पल हो तो हम एंजॉय खूब किया। बीमार हुए तो कोई दवाई नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, बाबा का संदेश था योग बल से अपने को ठीक करना है, तो कई सुंदर अनुभव होते थे।
आपने बीमारियों की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई, आप सोच सकती हैं कि यज्ञ में जब खाने पीने की और जरूरत की चीजें ही इतनी कम थी तो डॉक्टर और दवाइयां तो लाजमी है कि नहीं होंगे। बाबा बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे वतन से भेजा करते थे, योग के प्रयोग भेजा करते थे और उससे बाबा के बच्चे ठीक हो जाते थे। भ्राता जी जब यज्ञ में आए तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के आपकी इश्यूज रहती थी, तो मैंने सुना है कि बाबा ने आपको भी कुछ गर्म घी का हलवा खिलाने के लिए बोला था, बच्चे को 1 हफ्ता हलवा खिलाओ ठीक हो जाएगा।
बात 69 या 70 की है, तो हमारी एक दादी होती थी संतरी दादी, वो भी बाबा का रथ थी, गुलजार दादी और संतरी दादी दो को नियुक्त किया गया था, क्योंकि गुलजार दादी सदा यहाँ नहीं रहती थी, वो दिल्ली चली जाती थी, संतरी दादी यहीं रहती थी, और संतरी दादी थी बाबा के जो भतीजे थे ना विश्व किशोर दादा, उनकी धर्मपत्नी थी वो, यानी बाबा के भतीजे की धर्मपत्नी, तो यज्ञ में बहुत समीप थी। तो देखो पहले तो एक छोटी सी कहानी सुना दो बाबा के कमरे में जाने की। बाबा के कमरे में थोड़ा ही कोई जाता था, तो पीछे से ही रास्ता था, आगे से नहीं, और वहां बहनें सोती थी। अब मैंने दिन में रास्ता देख लिया, जाते रहते थे वहां कामकाज करने के लिए। अब मेरी आंख जल्दी खुलती थी 3 बजे, और मैं चुपचाप चप्पल दूर छोड़ के, वो हवाई चप्पल नहीं तो ठक ठक करेगी ना, और धीरे से आके अंधेरे में बाबा कमरे में बैठ जाता था। कोई बल्ब नहीं था, बिजली बहुत महंगी थी उन दिनों, क्योंकि यहाँ बिजली बाहर से नहीं आती थी, जनरेटर था आबू में एक बड़ा, उससे बिजली जनरेट होती थी और सबको सप्लाई की जाती थी। तो 2-3 दिन के बाद वो संतरी दादी भी उठ गई, उसने मुझे देख लिया। कौन? मैं कहा दादी मैं। काचा सूर्य तुम क्या करने आए हो? क्या बाबा के रूम में बैठता हूँ, चलो मैं भी बैठूंगी। हम दोनों बैठने लगे और उसने एक बल्ब भी लगवा दिया बाबा के रूम में।
एक कब की बात है व्रत?
ये शायद 69 की है।
बाबा थे तब?
नहीं,
बाबा नहीं, अभ्यक्त हो चुके थे।
तो उसने एक बल्ब भी लगवा दिया, तो वो ध्यान में बहुत जाती थी। तब मैं किचन में आ गया था, तो पानी के कारण, यहाँ का पानी बहुत भारी था, अभी भी है, अब तो मिनरल लग गए तो इजी हो गया, तब कच्चा ही पानी हम पीते थे, तो मुझे बुखार रहने लगा। अब बुखार रहे, बुखार में हम यंग थे तो अपना किचन में काम किया, पसीना आया, बुखार उतर गया, रात को फिर चढ़ गया, और ऐसे 7 दिन हो गए। तो 7 दिन हो गए तो संतरी दादी ध्यान में गई। अब मैं तब बाबा के रूम में नहीं जा रहा था, उसने देखा होगा ये तो आता नहीं आजकल, सो गया क्या, तो ध्यान में चली गई। बाबा ने उसको मुझे दिखाया और कहा बच्चे को बुखार रहता है, इसे 7 दिन तक देसी घी का हलवा खिलाओ, बुखार की दवाई भगवान के पास, देख लो कितनी अच्छी है। मुझे खिलाया गया, 1-2 दिन ही खाया था, ठीक हो गया मैं, और बस ये थी दवाइयां हमारे पास, हलवा खाने को मिला, बुखार भाग गया।
तो ये बहुत सुंदर सुंदर ऐसी स्टोरीज हैं जो बाबा ने बड़ी बड़ी बीमारियां इस तरह के छोटे छोटे घरेलू नुस्खों से ठीक किया। वास्तव में हलवा तो किसी मिर्च की दवा है नहीं, लेकिन बाबा ने जो कहा है, बाबा की वो शक्ति, वो ब्लेसिंग, उसके थ्रू बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हम लोगों ने सुने हैं। बाबा ने बोला बच्ची को सेव पर मक्खन डाल के खिलाओ, ये ठीक हो जाएगी, इसको ठंडे पानी से नहलाओ, ये ठीक हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे अनुभव है, परंतु समय की कमी है इसलिए हम उनसे
एक सुना देता हूँ। बाबा के यज्ञ में ये बाबा की ओर से बहुत मैसेज आते थे, और फिर दादी आ गई थी अव्यक्त होने के बाद, तो जिसको भी कोई तकलीफ है 1 हफ्ता मक्खन और रोटी, थोड़ी सी रोटी मक्खन उस पर मिश्री डाल के रोज 1 बार उसको दिया जाता था 1 हफ्ता, सदा नहीं। आजकल तो क्या 1 बार खिला दो तो रोग रोज आ जाएंगे, आज भी खिला दो 1 हफ्ता, उससे लोग ठीक हो जाते थे।
भरता जी आपने बताया कि जब ज्ञान सरोवर बन रहा था उस समय करीब बाबा के बच्चों की संख्या 3-4 लाख हो गई थी। आप जब यज्ञ में आए पहली बार उस समय कितनी स्ट्रेंथ थी टोटल?
10,000 थी, और बाबा अव्यक्त हुए तो एकदम से घट के 5,000 हो गई, इतनी कम रह गई थी।
अच्छा, 10 से केवल 5?
5, आधे निकल गए, और फिर तेजी से बढ़ गई, 76 तक तो 25,000 पहुंच गई थी, फिर घट के 15,000 आ गई, चलता रहा ये।
76 में क्यों घट गई?
आपको उस कहानी का पता है, कुछ बातों से सभी हम ब्राह्मण समझते थे कि 76 में सृष्टि का महाविनाश हो जाएगा, जब नहीं हुआ तो कई लोग निकल गए।
ब्रह्मा जी जब आप आए तो उस समय यज्ञ बहुत छोटा था, सेवाओं का इतना विस्तार नहीं था, तो किचन भी मैं समझता हूँ इस तरह से बड़ा स्वरूप नहीं रहा होगा। तो आपकी वो जो स्टोरी है कि आज वर्तमान समय आप पूरे यज्ञ का किचन संभालते हैं, पर उसकी शुरुआत तो तभी हुई थी, तो वो स्टोरी कैसे बाबा ने आपको किचन में सेवा आपको ये सौंपी, इसके पीछे बाबा का क्या विजन था, थोड़ा सा उसके बारे में।
बस आप सबने सुना ही होगा, बाबा आह्वान कर रहा था कोई योगी बच्चा आए बाबा के किचन में भोजन बनाए, क्योंकि भोजन जो बहने माताएं बनाती थी उनका इतना अच्छा व्यवहार नहीं था, तो किचन में शांति जैसी नहीं रहती थी। तो बस मैं आ गया और कुछ दिन तो जो म्यूजियम बना ना अपना आबू में उसमें हम रहे। निर्वैर भाई मुंबई में थे, वो वहां से आए और हमारी जो छोटे छोटे थे उनकी टीम उनको मदद कर रही थी। ओपनिंग करने अव्यक्त बाप दादा आए थे म्यूजियम में, और वो कहानी मेरी बहुत सुंदर है। कुछ बातें हुई वो अब मैं नहीं सुना रहा हूं, पर बाबा ने दृष्टि दी और योगी भव का वरदान मिल गया मुझे। और तभी इमीडिएटली दीदी मनमोहिनी थी, उन्होंने कहा बहुत भाई बहने आए हैं, बहुत भाई बहने माना 60-70 आए थे, सब बड़े बड़े आए थे, तुम किचन में सेवा करोगे? मैंने कहा दीदी ये पूछने क्या बात, हम तो समर्पित हो गए, जो आप कहेंगे करेंगे। मैं माताओं के साथ सेवा करने चला गया और वहां से एंट्रेंस हुआ किचन में, और माताएं तो 15 दिन के बाद चली गई, और जो माताएं थोड़ी सी अशांति करती थी उनको भी ड्यूटी बदल दी गई। अब रह गया मैं अकेला, अब मुझे कुछ आता नहीं खाना बनाना, चाय बनानी नहीं आती, मैं कभी चाय पी नहीं थी जिंदगी में, हम लोगों की तब तो दूध ही पीते हैं, उधर से आप सब आए हैं तो चाय न पी थी, एक बार पी ली तो दूध की तरह ज्यादा घूंट बढ़ लिया तो सब जला दिया। अरे चाय पीने की तो टेक्निक है, फिर किसी ने बताया ऐसे पीना चाहिए, तो धीरे धीरे सिखाया। बोली दादी हमारी इंचार्ज होती थी किचन की, और बड़ी दादी रोज आती थी कई बार दादी कुमार का मुझे भोजन सिखाने, हर चीज सिखाने के लिए, सिंधी कढ़ी, सिंधी हलवा, जानकी दादी आ जाती थी, सिंधी हलवा ऐसे बनाना है तो टोली बनाना, चाय बनाना, भोजन बनाना, वो सब काम मैं अकेला ही कर लेता था। फिर तो कभी 100 का बन रहा है, कभी 80 का बन रहा है, और जब सीजन नहीं है 50-60 का भोजन बन रहा है। डेली क्लास की टोली बनानी होती थी, वो तो मैं 15 मिनट में ही बना के चला जाता था क्लास में। तो वहां से शुरुआत हुई, सीखा सब कुछ, संख्या बढ़ने लगी, हम 1 से 2 हुए, 2 से 3, 3 से 5, और तब काम बढ़ गया था, हमारे पास 500-700 भाई बहने आने लगे थे। फिर बढ़ते बढ़ते मकान बने मधुबन में चारों ओर, हर साल एक बिल्डिंग बन जाती थी। ट्रेनिंग सेक्शन जो शांति स्तंभ के पीछे है उसकी सेकंड स्टोरी बनी, बाबा के समय नीचे का बना था, विशाल भवन बना, जो किचन है फिर 82 में वो बन के तैयार हुआ, सुखधाम जो है वो बना ओम शांति भवन से पहले, और फिर जो विज्ञान भवन है वो बना। तो ये सब बढ़ते बढ़ते, और एक एक कमरे में बहुत बहुत सोया करते थे। आप सोचो विशाल भवन में जो कमरे थे अगर बेड डाले तो 2 आकी आएंगी, लेकिन वहां एकोमोडेशन दिया जाता था 10 को, कुछ अंदर सो जाना कुछ बाहर। तो इस तरह से 1000 लोग तक भी आने लगे, हमारी टीम बढ़ गई, तो किचन नया बन गया क्योंकि छोटा हो गया था, लकड़ियों पर खाना बनता था, और हंसी की बात सुना दूं कि लकड़ियों को कवर करने की कोई जगह नहीं थी, तिरपाल भी उनके ऊपर डाल दो वो भी नहीं थी, तो लकड़ी भीगती रहती थी, उनको उठा के हम उनको जलाया करते थे। अब सोच लो कितना सहज काम था ये, बारिश हो गई है 24 घंटे लकड़ियों के ऊपर और उनसे ही हमें खाना बनाना है, तो लेकिन एंजॉय बहुत किया। हमें कुछ ऐसा नहीं होता था ये क्या हो रहा है, इस पे कवर क्यों नहीं किया जा। दादी आती थी देखती थी किचन में धुआं ही धुआं है, हमारे सिर तक धुआं भरा हुआ है ऊपर पूरा, जैसे बादल हो हमारे सिर के ऊपर। दादी भी आती थी और ये धुआं बहुत है किचन में, तो एग्जॉस्ट फैन भी नहीं लगाया जाता था, बिजली बहुत खाता है एग्जॉस्ट फैन, इसलिए वो भी नहीं लगता था, लेकिन एंजॉय बहुत किया। मैं तो अच्छे संकल्प रखता था कि ये धुआं हमारी आंखों को ऐसा कर देगा कि आंखों की तकलीफ कभी नहीं होगी, ये गर्मी हमारे शरीर को ऐसा कर देगा, शरीर की सारी गर्मी और गंदगी निकल जाएगी। मैं तो ऐसे ऐसे संकल्प रखता था और खूब एंजॉय किया, बाबा की मदद बहुत ज्यादा होती थी उसमें।
यज्ञ में शुरू में ये चीजें बहुत कॉमन थी, सुविधाएं तो थी नहीं, तो जैसे भ्राता जी कह रहे हैं कि धुआं बहुत होता था, आंखों में लगता था, मैं भी जब आया 18-20 साल की उम्र में ही चश्मा लग गया, आंखों में बहुत जलन रहती थी, तो अक्सर भ्राता जी कहते थे चिंता मत करो, तुम्हारी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, तुम्हारी आंखों के सब रोग ठीक हो जाएंगे। और सचमुच इतने वर्षों के बाद भी मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और ये हकीकत है कि भगवान की सेवा में हम रहते हैं तो जलना, धुआं, ये बहुत कॉमन है, और ये सब चीज़ें हमें सुख भी देती हैं और हमारे शरीर को स्वास्थ्य भी प्रदान करती हैं। तो ये जो सत्र रखा गया है, इसके पीछे लक्ष्य यही है कि हम सब ये समझें कि एक साधक को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और हमें गुजरना भी चाहिए, इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। हम जो पुराने दिनों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आज हमारे पास क्या नहीं है, फिर भी बहुत सारे बाबा के बच्चे आते हैं, कंप्लेन करते हैं, बाथरूम अच्छा नहीं है तो रहने के लिए बेड अच्छे नहीं है। लेकिन उन दिनों से जब तुलना करते हैं तो आज हमारे पास बहुत कुछ है। हमें कभी भी बाबा के घर की कमियों को नहीं देखना चाहिए। हमारा सेवा पहले, यज्ञ पहले, शरीर बाद में, तो ही हमारी सदगति होती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, आप सबको अच्छी लग रही हैं? हाथ जरा खड़ा करके एक बार बताएं, बहुत अच्छी लग रही हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भ्राता जी, मैं समझता हूँ कि शुरू से ही तो रात्रि क्लास का प्रचलन हमारे यहाँ रहा नहीं होगा, इसकी शुरुआत कब हुई और किसने की?
हाँ, इसके पीछे एक छोटा सा रहस्य था कि पहले हमारी रात्रि क्लास में होती थी, समाचार सुनाए जाते थे, सेवाओं के लेटर आते थे और कोई भी बहन लेटर पढ़ती थी। अभी आप जानते हैं इसमें कुछ रुचि सबको नहीं होती, धीरे धीरे वो संख्या कम होती जाती थी। दीदी मनमोहिनी जब तक थी तो वो सबसे पहले क्लास में आके बैठ जाती थी, ठीक 9 बजे रात को, तो हम सब भागे भागे आ जाते थे। अब दीदी जी ने छोड़ दिया शरीर, क्लास ढीली होते होते बंद हो गई, तो दादी ने सबको रिक्वेस्ट की भाई क्लास बंद नहीं होनी चाहिए, ये यज्ञ का नियम है, रात को नहीं तो कोई कुछ बातचीत करते, किसी के पास रेडियो आ गई थी वो सुनते हुए सो जाते थे। हम लोगों के पास रेडियो नहीं होती थी, न्यूज़पेपर यज्ञ में आता नहीं था। 16 साल तो हमने कोई संसार समाचार का हमें पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, न कोई न्यूज़पेपर न कोई रेडियो, उन दिनों यही दो चीज थी बस। करुणा भाई होते थे, वो कभी कभी बीच में समाचार सुना दिया करते थे, हम सबको पता लग जाता था। तो क्लास बंद हो गई, दादी ने सबको कहा लेकिन सफल नहीं हुए। तो मैं उन दिनों रात को 8:30 से 9 बजे सेवादारियों की क्लास किचन में कराया करता था। हम सदा ही, बाबा ने कह दिया था कि बाबा योगी तब मानेंगे जब बहुतों के योगी बनाओगे, मुझे ये काम दे दिया था अव्यक्त बाबा ने। तो मेरे साथ हमेशा एक टीम चलती रहती थी, 20 लोग 25 लोग, उसमें कुछ सेवादारी, कुछ मधुबन वाले जो नए नए आते थे, हम सब योग की अच्छी रेस किया करते थे, योग और कुछ चीजों को ढीला नहीं होने देते थे। किचन की हमारी टीम भी बहुत अच्छी हो गई थी तब तक। तो मैं रात को 8:30 से 9 बजे क्लास कराता था। तो दादी ने मुझे बुलाया कि मैंने सुना है आप 8:30 से 9 क्लास कराते हो किचन में। मैंने कहा हाँ दादी। मैं तो डर गया, मैं कहा दादी डांटेगी कि तुम क्लास कराते हो इसलिए यहाँ कोई क्लास में नहीं आता। लेकिन दादी अति अति बुद्धिमान, दादी ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, जो क्लास वहां कराते हो ना वो हॉल में करा लिया करो। देखो कितना वाइज आंसर, कितनी एक विवेकपूर्ण डिसीजन दिया। और मैंने जीवन में प्रतिज्ञा की थी मैं ना नहीं करूंगा कभी। मैंने कहा ठीक है दादी। अगले दिन से 9 बजे मैं आ गया क्लास में, लोग भागे भागे आ गए, कम से कम 50 आ गए, और सबसे पहले आ गई दादी। दादी मेरे सामने बैठी है और मुझे क्लास करानी है। तब तो नीचे ही बैठते थे ना सब, एक ही कुर्सी होती थी यज्ञ में, उसमें कोई बीमार आदि उसको दे दी जाती थी। दादी ने मुझे कहा नहीं डरो नहीं, कराओ क्लास, दादी क्लास सुनने आई है, बस मेरा उमंग बढ़ गया। दादी से तो वैसे ही क्लोज थे, किचन में बहुत आती थी, शुरू में रोज 5 बार, फिर उन दिनों 3 बार रोज आती थी, हमसे समीपता हो गई थी, हमने क्लास शुरू की और वो बाबा का हमें वरदान मिला। तब से मैंने 10, 11, 12 साल डेली रात्रि क्लास कराई मुरलियों पर, और फिर जब ज्ञान सरोवर बन गया, यहाँ की भी कहानी है, ये बहुत दूर था पांडव भवन से, अब किसी के पास गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, दादी जिसको कहे भाई वहां जाओ, काम चल रहा है, किसी को खाना नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, सड़क नहीं थी ना, तो कोई जाए, सब ना करें, जाए कैसे, साइकिलों से तो यहाँ आ ही नहीं सकते थे, साइकिल भी 2 थी। मैं एक दिन खाना खा के बाहर जा रहा था घूमने दिन में, दादी ऑफिस से बाहर निकली, मुझे देखा, सूर्य इधर आओ, ज्ञान सरोवर जाओगे? अब मेरी वही नेचर, हाँ जी, मैंने कहा ठीक है दादी जाएंगे। अगले दिन से मैं ज्ञान सरोवर आने लगा, तब तक हमारी मधुबन की टीम भोजन की बहुत अच्छी हो चुकी थी, जो ज्ञान सरोवर वाले किचन में यहाँ अब हैं, इनको हमने 2 साल पहले ही रख लिया था, संजय भाई भी थे, रुपेश भाई भी, बहुत अच्छी टीम हमारी फर्स्ट क्लास तैयार हो गई थी, हमें किचन की चिंता नहीं थी। मैं रोज आने लगा, हमें दिलवाड़ा की तरफ छोड़ देता था कोई, वहां से हम पैदल आते थे, बस ऐसे ज्ञान सरोवर में आना शुरू हो गया।
हमें याद है भाई साहब को पहले पहले एक मोटरसाइकिल दादी ने दी थी, शायद यामाहा या किसी कंपनी की, एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल थी, और भाई साहब को भी ठीक से चलाने नहीं आती थी, तो भाई साहब
कई बार रेत में गिरी गए,
तो मुश्किल से भाई साहब धीरे धीरे यहाँ आते थे, और हम लोग तो खैर तब छोटे थे, बहुत
रेत ही रेत होता था ना, इधर तो इधर को रास्ता था,
तो भाई जी
स्लिप हुई, मैं भी नीचे, मोटरसाइकिल मेरे ऊपर,
तो कई बार तो हम लोगों ने भी जानबूझ के भाई जी को गिराया है, अचानक आते थे, इनसे नया नया सीखा था, ऐसे हिलती रहती थी, हम लोग छोटे थे, थोड़ा मस्ती रहती थी, बच्चे थे, कूद के एकदम सामने ऐसे आ जाते थे, और भाई जी ब्रेक की बजाय कुछ और गिर जाए, तो बड़ा अच्छा लगता था, वो सब बड़ा पारिवारिक दिन थे, बहुत अच्छा लगता था। और ये एक बड़ा सुंदर परिवार है ना, जहाँ पर आनंद भी है, तो सेवा भी है, तो साधना भी है, तो शिक्षा और सावधानियां भी हैं, कैसे दादियों ने आप सबको इतना ऊपर उठाया, और आप सब ने हम सबको ऊपर उठाया। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा पूरा मानना है कि यज्ञ के शुरुआती दिनों में, आज ज्ञान सरोवर में कम से कम 25 भाई तो ऐसे होंगे, भाई बहने जो अच्छे वक्ता हैं, अच्छे पुरुषार्थी हैं, और इसका सारा श्रेय मैं चंद्रमणि दादी जी को, आपको और गीता बहन जी को देता हूँ। खास करके आपसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, शुरुआत दिनों में इतनी सेवाएं होती नहीं थी, तो बहुत कुछ हमने सीखा है, और क्लास कराना इतना सहज तो नहीं होता, जैसा भ्राता जी कह रहे थे कि दादी सामने बैठी है, कोई इतनी बड़ी हस्ती सामने बैठी हो और क्लास कराए, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। मुझे जब पहली बार आज से 20-25 साल पहले स्टेज पर भ्राता जी ने भेजा कुछ क्लास कराने के लिए, तो क्लास कराना तो दूर की बात, मैं अपना पैर ही कंट्रोल कर रहा हूँ, पैर कांप रहे हैं, बोलना तो अलग की बात है। इस यज्ञ में वक्ताओं की कमी नहीं है, पर सूर्य भाई जी की अपनी एक अलग पहचान है, इनकी बातें बिल्कुल दिल को छूती हैं और एक पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करती हैं जाने के लिए। तो भ्राता जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो ये यात्रा तय की और उसमें इस मुकाम पर जो पहुंचे, इतने अच्छे आप वक्ता आज बन चुके हैं, इसमें आप क्या मानते हैं, ये आपकी मेहनत है या कहीं ना कहीं बाबा की तरफ से मिला हुआ कोई ईश्वरीय वरदान है?
इसमें कई चीजें हैं, एक तो दादी जी हम सभी को भाषण करना सिखाती थी, मुझे भी 3 बार मौका दिया गया, मुरली से पहले 10-10 मिनट बोलो, बस 3 बार में मेरे को तो बोलना आ गया, स्टेज फियर खत्म हो गया। फिर अव्यक्त बात दादा ने मुझे मनन शक्ति के लिए कहा और वो वरदान दे दिया, वो भी मेरे को वरदान हो गया। और फिर कुछ अपनी मेहनत होती है, मैंने 100 टॉपिक पर लिखा था पहले पहले ही, ये बात 72 की होगी, उससे मेरी मनन शक्ति बिल्कुल खुल गई, और जब मुझे कोई क्लास करानी पड़ती थी तो मैं 5 मिनट में उसके पॉइंट नोट कर लेता था और बस क्लास में पहुंच जाता था। देखिए, किसी भी चीज की सफलता से पहले हमारी क्लास में प्रभाव हो, लोगों को वो अच्छी लगे, उसमें हमारे अनुभव बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मुझे पहले से आदत थी बाबा को बुला लेना, अनुभव युक्त क्लास। मेरा लक्ष्य रहता था क्लास थ्योरिटिकल न हो, कि हम बहुत सारी बातें सुना दें, क्लास कोई भी हो, ऐसी हो जिसमें लोग कुछ अभ्यास करने का सीख कर जाएं, कुछ उससे अच्छी प्रेरणाएं मिलें। तो इसमें मेरे को कोरोना काल के तो इतने अच्छे अनुभव हैं, ऑनलाइन क्लास होती थी, आप हैरान होंगे सुन के भी, दिन में 3 बजे क्लास है विदेश की और मुझे नींद आ रही है, और मैंने बाबा को कहा, बाबा देखो मुझे तो आ रही है नींद, अब आप संभाल लेना क्लास वगैरह को। और मेरे कम से कम 10 बार का अनुभव है कि मैंने आधी नींद में क्लास कराया, आधी नींद में, और क्लास बहुत अच्छा हुआ, मैं भी सुन रहा हूं कि क्लास तो बड़ा अच्छा हो रहा है। कौन करा रहा था? बिल्कुल क्लियर फीलिंग के बाबा करा रहा है, टॉपिक भी बहुत गहरे गहरे होते थे, तो इसमें बाबा की बहुत ज्यादा मदद। अपनी तो थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन जो मुझे इस जीवन में सबसे बड़ी एक चीज मिली, जो बाबा की शक्तियां या बड़ों की दुआएं, हाँ जी करना। मुझे याद नहीं कि मैंने बड़ों को कभी ना कहा हो, चाहे मेरी तबीयत कैसी भी हो। छोटा सा अनुभव सुना दूं, दादी बैठी है, मुझे बुलाया, कल 900 लोग हैं, भोग में मालपुआ बनाना है। अब मालपुआ बनने में बहुत देर लगती है, हमारे पास कढ़ाई एक थी, बड़ी कढ़ाई होती है ना, 1 घंटे में 200 ही बनते थे, अब 900 मालपुआ बनना है, कम से कम 4 घंटे चाहिए। हमारे साथ टीम बहुत अच्छी थी, डॉक्टर बनारसी जो बड़ा काम कर रहे हैं, रामश्लोक भाई, आतम, रामलोचन, ये सब जो आज बड़े बड़े काम करते हैं, ये सब हमारे किचन में थे। 2 बजे उठे, छाछ बनानी होती है, उसको ठंडा करना होता है, आटा बना के 1 घंटा रखना होता है, हम लोगों ने शुरू किया। मेरे को पेट दर्द बहुत था, लेकिन मैंने दादी को कहा कि दादी हाँ बनाएगा, और बस मदद ये थी कि हमने 4 घंटे में मालपुआ बनाया और पेट दर्द गायब हो गया। ये बहुत अनुभव, बहुत सारे अनुभव सेवाओं में। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बाबा आपने जो मुझे ये एक चीज सिखाई कि हाँ जी करना है, इससे मेरी बहुत कलाएं विकसित हो गई। बाबा के पहली क्लास की भी ऐसी बात है, मनोहर दादी ने दादी को कहा कि दादी, उन दिनों 6:30 दादी आ जाती थी और 6 से लगभग 10:30-11 तक प्रोग्राम चलते थे, तो मनोहर दाई ने दादी को कहा कि दादी सब लोग ऐसे ही आके बैठ जाते हैं 5 बजे, कोई इधर देख रहा कोई उधर देख रहा, योग तो किसी का लगता नहीं, वातावरण नहीं बनता, बाबा आ रहे हैं, वातावरण बहुत अव्यक्त होना चाहिए, कोई क्लास कराए एक। अब 4:30 क्लास करानी थी, अब कौन कराए 4:30 क्लास, सबके रेस्ट का टाइम होता है, बड़ी दादियां तो जाती 3 बजे हैं रेस्ट पे, तो आखिर नाम निकल गया मेरा। दादी ने कहा सूर्य को कहो वो 4:30 क्लास कराए, अब मैंने वही हाजी कह दिया। देखो हाजी से कितने फायदे होते हैं, ये हम सबको सीख लेना है। मैं 4:30 क्लास शुरू की, 5 बजे से मनोहर दादी भी सुनने लगी अपने कमरे में, स्पीकर तो बहुत कम होते थे, कहीं कहीं थे, फिर दादी भी सुनने लगी, बस उसका प्रवाह हो गया और ये अवसर मुझे मिल गया। तो ऐसे हाजी करने से बाबा की मदद बहुत मिली। कभी कभी ऐसा होता था पेट बिल्कुल खराब है, गैसेज हो रही, एसिड हो रहा है, और मैंने हाजी किया और क्लास कराने के बाद वो सब ठीक हो गया। तो बहुत जबरदस्त अनुभव जीवन के, कम से कम 1000 हाजी करने के, हेल्थ में फायदे, योग्यताएं बढ़ने में फायदे, कितनी बार हुए होंगे मुझे, ये तो एक लंबी कहानी मेरे पास, मुझे कुछ चीजें याद भी रहती हैं।
हमारे यज्ञ में 2 शख्सियत ऐसी रही हैं शुरू से, जिनके बारे में यज्ञ में ये प्रचलित रहा है कि इनके मुख से आज तक किसी ने ना नहीं सुना है, एक भोली दादी जी और एक सूर्य भाई जी। ये यज्ञ में दोनों आत्माएं हमेशा हाजी के लिए जाने जाते हैं, और जब हम लोग शुरू शुरू में आए, ज्ञान सरोवर की शुरुआत ही हुई, हम लोग को अपनी अपनी सेवाएं दी गई, मुझे भी किचन में रखा भाई जी ने। अक्सर हम लोग की परवरिश करते हुए यही कहते थे, किसी को ना नहीं कहना है, सबको संतुष्ट करके बाबा के घर से भेजना है, ना शब्द तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। तो बहुत सुंदर सुंदर बातें जो हम सबको आप सबसे सीखने को मिली हैं, उसके लिए दिल हमेशा शुक्रगुजार रहता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, एक प्रश्न ये भी है, मैंने भरत जी क्लास के बारे में आपसे पूछा, मैंने कहीं एक बार आपसे ही सुना या किसी और से कि एक बार शायद बाबा ने बोला या कुछ ऐसा कि बच्चे तुम जब भी बोलोगे तुम्हारी आवाज के साथ साथ मेरी आवाज में मिक्स होकर के आएगी, कुछ ऐसा था?
ये बाबा का वरदान था मुझे,
इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था।
मुझे ये जब बाबा से पहले मैं क्लास कराता हूँ, मुझे ये साफ अनुभव होता है, कहने की बात नहीं कि मैं कहूँ मैं नहीं करा रहा हूँ, साफ अनुभव होता है मैं बाबा को बुला लेता हूँ। मैं कुछ भी तैयारी नहीं करता क्लासेस की, एक दो पॉइंट सोच लेता हूँ इस पे कराना है, और बाबा से पहले आप सब समझ सकते हैं वो क्लास बीच में कईयों को दी भी गई, लेकिन कोई भी 20 मिनट से ज्यादा नहीं करा पाया, क्योंकि सभा बहुत बड़ी होती है, कभी 20,000 बैठे, कभी 28,000 भी बैठे हैं। उस सभा को कंट्रोल करना वो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं होता। मैं कहूं कि मैं कंट्रोल कर लेता हूं, बिल्कुल गलत होगा। तो मैं तो बाबा का आह्वान करता हूं और बस ऐसा ही लगता है कि बाबा मेरे साथ बोल रहा है, मेरी दृष्टि में बाबा की दृष्टि काम कर रही है और सब कुछ शांत हो जाता है। मतलब मुझे बहुत अच्छे अनुभव होते हैं वो क्लास करा के, दूसरों को तो जैसे भी होते हों, बहुत ज्यादा एंजॉय मैंने किया उस क्लास को। तो ये बाबा की आवाज और बाबा का साथ का अनुभव बहुत गहराई से होता रहता है, अब तो बहुत ज्यादा होता है। बीमारी भी होती है, कोई भी हो गई, मैं गिर गया एक दो बार, चोट लगी ज्यादा, मैंने बाबा को कहा आप ही भेजो किसी को, आप सुप्रीम सर्जन हो, मुझे ठीक करके जाए। मुझे इतने वंडरफुल अनुभव हैं। एक भाई दिल्ली का है, आज भी आया मेरे साथ, हाथ से बहुत कुछ ठीक कर देता है, सर्वाइकल कमर का, नेचर क्योर सेंटर चलाता है जज्जर में। उसको शाम को तेज जोर से प्रेरणा आने लगी, चलो, आज मुझे बताता था जैसे मेरे कदम टिके नहीं धरती पर, और मैंने जैसे तैसे टिकट निकाला और अगले दिन आ गया और सीधा मेरे पास। मैंने कहा आप यहां आ गए? कहां, बाबा ने भेजा। और उसने मुझे एक ही झटके में 2-3 दिन रहा वो ठीक कर दिया। तो ये इतने अच्छे बाबा की मदद के अनुभव होते हैं। मैं तो कुछ भी हो जाए जो मैं सुनाता हूं, बीमारी भी हो जाए, डॉक्टर को पीछे याद करना, पहले बाबा को, मुझे ये अच्छी आदत पड़ गई है। तो बाबा की मदद के बिना मुझे ऐसा अनुभव है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया, न पा सकते थे। उसकी बहुत ज्यादा मदद और कई चीजों में उसके वरदान मेरे साथ हो गए, इससे जो कुछ मैं करता हूं वो होता है। इसमें मेरा कम, बाबा का ज्यादा हाथ रहता है।
ये तो हम सबके जीवन का अनुभव है कि जो भगवान के लिए जीते हैं भगवान उसके काम आता है, हर पल उसके काम आता है, मुश्किल वक्त में तो बहुत ही काम आता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण भ्राता जी सुना रहे थे कि 3 बजे का समय, भारी समय, नींद आ रही है, फिर भी क्लास कराया, वो मैंने नहीं कराया, बाबा ने कराया। ऐसे और भी यज्ञ में बहुत सारे अनुभव हैं। एक बार आपने ही शायद देव सरन दादा जी का अनुभव सुनाया था कि वो ट्रक लेकर के आ रहे थे और चलाते चलाते सो गए।
सुन लो, मैं ही सुना देता हूँ। बहुत पहली बात है, मजदूर नहीं थे, यज्ञ में चले गए थे छुट्टी में, जब यहाँ होली होती है ना तो सभी मजदूर चले जाते हैं, वो अपने गेहूं वेहूं भी काटते हैं और बहुत देर लगा देते हैं। तो हमारे पास एक ही ट्रक था यज्ञ में, देवसरन भाई एक थे मिलिट्री से रिटायर हवलदार, वो चलाते थे। तो सारा दिन वो गांव गांव में गए, मजदूरों को ट्रक में बैठाया, जो जो थे उनकी पहचान करके, और रात को आ रहे थे ऊपर। और उनको थोड़ी चढ़ाई के बाद ही आ गई नींद। और जब वो पांडवों में पहुंचे तब आंख खुली, अरे उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये बाबा की मदद के कमाल हैं।
जैसा कि भ्राता जी कह रहे थे कि शुरू के दिनों में अमृत वेले का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, जिसको भी उठना हो उठे, जिसको न उठना हो न उठे। भ्राता जी हम जानना चाहेंगे कि ये अमृत वेले की प्रथा रेगुलर कब से हुई, साथ ही साथ ये जो ट्रैफिक कंट्रोल हमारा है, आप सबको पता होगा कि भाई साहब केवल अच्छे स्पीकर ही नहीं है लेकिन अच्छे एक ऑथर भी हैं। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और यज्ञ के शुरू के कई गीत भाई साहब ने लिखे, बहुत पुराने अच्छे अच्छे गीत भाई साहब के लिखे हुए हैं। तो
मैं बता देता हूं कब शुरू हुआ, बात 73 की है। बारिश बहुत हुई, जैसी साल बारिश हुई शायद इससे भी ज्यादा गहरी बारिश हो गई थी। और ये जो नीचे नदी है ना, एक यहाँ स्वरूपगंज है पास में, उसमें एक डैम है, वो टूट गया था। टूट गया तो नदी भर के चलने लगी, 9 फुट पानी था, गांव के गांव बह गए। और जो अबू रोड का पुल है उसका भी एक हिस्सा बह गया। अब ना कोई गाड़ी आ सकती थी ना कुछ। दीदी गई हुई थी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली और दादी गई हुई थी ट्रीटमेंट के लिए मुंबई। यहाँ थी शांतामणि दादी और मनोहर दादी। अब सबने प्रश्न किया कि दोनों दादी बाहर हैं और कोई आ जा नहीं सकता, तो हम लोग क्या मदद करें। तो शांतामणि दादी ने कहा कि सोमवार और गुरुवार को अमृत वेले दोनों दादियों के लिए योग किया जाए। वहां से 2 दिन योग शुरू हुआ। फिर दोनों दादियां जब आ गई तो उन्हें पता चला, कुछ ही समय के बाद इसको रेगुलर कर दिया गया।
और ट्रैफिक कंट्रोल की,
और ट्रैफिक कंट्रोल की बात ऐसे थी, दादी अव्यक्त मुरली पढ़ रही थी और उसमें योग की ऐसे ही कुछ बात आई कि हर घंटे में तुम्हें रुक कर भी कुछ अभ्यास करना चाहिए। तो दादी ने पूछा क्या करें, तो 2-4 भाई थे हम, राय निकली कि हर घंटे गीत बज जाए। तब गीत बन गए थे बाबा के, थोड़े से गीत बने थे। पहला गीत पता कौन सा बना था, बाबा के समय 2 गीत थे, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान और शिव स्वागत आज तुम्हारा, ये 2 थे। फिर 77 में 4 गीत और बने जिसमें था ओ मधुबन वाले बाबा और ओम शांति जो बजते हैं वो 4 गीत, ये 5-6 गीत बने। तो सभी की राय हुई कि हर घंटे गीत बजे 3 मिनट का, सब योग करें। लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया, जिनको योग लगता नहीं उन्होंने विरोध किया, कैसे भला ऐसे होगा, काम छोड़ के कैसे योग करेंगे। अब कईयों से कर्म योग तो आता नहीं, लेकिन दादी को ये बात बहुत पसंद आ गई। तो ये 5-6 टाइमिंग रख दिए गए, सवेरे 7 बजे, फिर 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30, 7:30, 9:30 रात तक। इनमें 3-3 मिनट के गीत बजने लगे, जिनको योग करना अच्छा करने लगे। और फिर सबको रस आ गया तो ये घंटे घंटे का है। ट्यूनिंग तो 15-20 साल से ही हुई, जब से नीचे शांति वन बना था तो ट्यून बजती है हर घंटे में। तो ये सिस्टम तब से शुरू हुआ, इसको बने हुए भी 40 साल तो हो गए होंगे।
रता जी, लोग अब तो ये शब्द थोड़ा कम सुनने को मिलता है, लेकिन पहले लोग आपको सूरज भाई से ज्यादा योगी राज के नाम से जानते थे। अक्सर लोग गुरुजी या योगी राज कह के पुकारते थे। जब हम लोग शुरू शुरू में यज्ञ में आए, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप सचमुच योगी राज हैं।
मैंने अपने जीवन में योग को, जो मैंने बताया था ना, अप्रैल 69 में बाबा से मुझे योग का वरदान मिल गया था। और वरदान ही नहीं, कुछ अच्छी शिक्षाएं मिल गई थी। छोटे में कहानी सुना देता हूँ। अव्यक्त बाप दादा ओपनिंग करने आए थे म्यूजियम की, तो बहनें बहुत चिटचैट किया करती थी, सब दादियां थी और बड़े भाई जगदीश भाई रमेश भाई ये सब बैठे थे। तो दादियां चिट चैट कर रही थी, बाबा आप हमें छोड़ के चले गए, आपने तो कहा था साथ लेकर जाएंगे, आप छोड़ गए हमें, बड़े प्यार से ये बातें होती थी उन दिनों, हम तो छोटे थे सुनते रहते थे। बाबा ने कहा अच्छा ले जाएं, लेकिन आप किस किस का योग 8 घंटे है वो हाथ उठाओ, किसी ने नहीं उठाया, तो ले कहां जाएं, फिर पुनर्जन्म होगा, इससे तो अच्छा ना यही पुरुषार्थ करो, संतुष्ट हुए। फिर बाबा का टर्न हो गया स्वरूप और कहा अच्छा जिसका 6 घंटे योग हो वो हाथ उठाओ। अब मेरा भी नहीं था, अब मैं देखा दादियों की तरफ कोई हाथ नहीं उठा रहा, अगर मैं उठाता भी तो डर लगे, अभी किसी ने नहीं उठाया। बाबा ने फिर कहा अच्छा जिसका योग, उन दिनों रूढ़िहान को अलग समझते थे, रूढ़िहान सर्विस मनन चिंतन, सर्विस माना सर्विस का चिंतन, ये सब मिलके 8 घंटे हो वो हाथ उठाओ। अब मेरा योग उन दिनों बहुत अच्छा चल ही रहा था, 8 घंटे तो नहीं था पर थोड़ा अच्छा था, तो मुझे ऐसा लगा जबर बहनों को देखा बाबा ने, किसी ने हाथ नहीं उठाया, फिर भाइयों की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा मेरा हाथ जबरदस्ती किसी ने उठवा दिया, ये सच्ची बात है। 4 भाइयों ने हाथ उठाया, जगदीश भाई भी थे, गोपाल भाई जो नीचे हैं वो थे, मैं और एक कोई और था। बाबा ने चारों को आगे बुला लिया। अब जगदीश भाई मुझे अच्छी तरह जानते थे, मैं वो भी दिल्ली के थे, तो मुझे सबसे आगे कर दिया, वो खुद पीछे हो गए, हम तो मिलते ही रहते हैं, तुम आगे जाओ। अब बाबा ने बहुत पावरफुल दृष्टि दी और कहा जिन्होंने हाथ उठाया है बाबा उनका 1 हफ्ते का चार्ट देखेंगे, और कहा प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थ करो, इंतजार नहीं करो इंतजाम करो, 3 महावाक्य बोल दिए। मैं ही आगे था, बहुत पावरफुल दृष्टि दी, और मैं और भोपाल भाई दोनों फ्रेंड थे, वो समर्पित नहीं था, मिलिट्री में था, मेरठ का ही है वो भी, तो हम दोनों ने अगले दिन रेस की कौन ज्यादा योग करेगा, और मैंने घंटे घंटे का चार्ट लिखा तो मेरा योग 6 घंटे हो गया। जीवन में पहली बार अति आनंद, उमंग बढ़ गया। भोपाल भाई ने कहा भाई मेरा तो नहीं हुआ, वो रेस से बाहर हो गया। अभी अगले दिन मैंने प्रतिज्ञा की, देखो ये बाबा का था वो सब कि 7 घंटे आज करूंगा, अगर न हुआ तो रात को जाग कर करूंगा, खाना छोड़ूंगा, 7 हो गया, तीसरे दिन 8, बस वो दिन मुझे आज तक याद रहता है, जब 8 घंटे योग हुआ मेरे मन में कितना आनंद था, क्या एक अलौकिक नशा था, बस वो एक राह मिल गई तो सदा के लिए मिल गई। और मैं एकांत बहुत लेता था, किचन में सारा काम करते हुए भी 6 घंटे मैं अपने बचा लेता था, फिर काम बढ़ने लगा तो 4 घंटे, जब तक ज्ञान सरोवर बना तब तक 4 घंटे रोज एकांत, पहाड़ियों में चले जाना, नक्की के किनारे चले जाना, कोई ऐसी पहाड़ी नहीं पांडव उनके सामने जहां हम न गए हों योग अभ्यास अच्छा करने, तो ये सब साधनाएं बहुत चली और 16 साल तक चली। टाइम हो गया,
समय तो हो गया है, और इसे हम अंतिम प्रश्न मानते हुए एक छोटा सा दृष्टांत, एक छोटी सी स्टोरी आपको बता करके मैं पूरा करना चाहूंगा। 93 में मुझे भाई साहब ने रोटी डिपार्टमेंट पांडव भवन में सेवा में भेजा, यज्ञ में आए थे, योग में ज्ञान में रुचि बहुत थी, प्रायः सबकी शुरुआती दिनों में रुचि रहती ही है। हमें रोटी डिपार्टमेंट में सुबह 4 बजे जाना पड़ता था, क्योंकि 5 बजे माताएं आती थी तो आटा वगैरह बना करके तैयार रखना होता था। अब 4 बजे जाना है तो नहा धोकर के जाना है, सुबह बिना नहाए जा नहीं सकते, उसके लिए 1 घंटा पहले हमें उठना पड़ता था, क्योंकि 2 हॉल थे, 2 हॉल में 150 लोग रहते थे और उनके नहाने के लिए केवल 4 बाथरूम होते थे 150 लोगों के बीच में। अब जाना है तो अमृत वेला योग भी करना है, बिना योग किए कैसे जाएं, तो 2 बजे उठते थे, 1:30 बजे उठते थे, उठ करके फटाफट नहा करके और 3 बजे तक बाबा के कमरे में पहुंच जाते थे, 1 घंटा योग करके फिर 4 बजे जाते थे। मैं पहले दिन जब बाबा के कमरे में गया तो देखा कि आगे एक भाई बैठे हुए हैं, ठंडी के दिन होते थे उस समय, भाई पूरा मफलर वगैरह टोपी ऊपर पहन करके, चेहरा तो नजर नहीं आता था, तो मेरे मन में जिज्ञासा से जागी कि कौन भाई है 3 बजे आकर के बैठ गए योग में। मैं लगभग 4-5 दिन देखा, रोज मेरे से पहले कोई नहीं होता था, अकेले बैठे टोपी ओपी पहन करके, चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो मेरे मन में लगा कि कौन है, मुझे जानना चाहिए। अगले दिन मैं 2:30 बजे पहुंच गया नहा धो करके, तो देखा 2:30 बजे भी बैठे हुए हैं। फिर मुझे समझ में नहीं आया कौन है, और वो भी कई दिनों तक, महीनों तक मैं ये देखता रहा। बाद में वहां जो पहरे पे भाई लोग रहते हैं पांडव भवन में, मैंने पूछा कि भाई ये कौन भाई हैं जो सुबह सुबह 2:30 बजे से योग में बैठ जाते हैं। तो किसी ने बताया कि ये सूरज भाई जी हैं जो आ करके। तो इस तरह से भ्राता जी की दिनचर्या, इनकी साधना, इनका पुरुषार्थ रहा है। हम सब यज्ञ में आए हैं, सेवा हमारा पहला धर्म है, पहली प्रायोरिटी है। लेकिन आपको हमने शुरू से देखा है कि सेवा के साथ साथ पुरुषार्थ को भी आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर रखा हुआ है। तो एक बहुत सुंदर अनुभवों की लेन देन हुई, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। भविष्य में जब कभी मौका मिलेगा, हम भ्राता जी को फिर से आप सबके बीच में बुलाएंगे और आपके अनुभवों से लाभान्वित होंगे। अभी समय हो रहा है, 2 मिनट बाबा की याद में बैठकर इसे पूरा करते हैं। ओम शांति।